بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب برمودا تکون اور دجال ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ اس کے مصنف مولانا عاصم عمر ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225۔ یہ حالات کیا ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ ایسے وقت میں کیا کرنے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا؟ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی سے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کر دے، اپنے گھر میں محنت کرے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو قائل کرے۔ اس طرح انشاءاللہ اس کی اس محنت میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دجال سے پہلے صف بندی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دجال کے فتنے پر ہی ہے۔ سو جو اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم، دجال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث اور آنے والی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہو جائے گی، یعنی دجال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو یا دجال کے متحدہ لشکر کا ایندھن بن جائے۔ گزشتہ سال CIA نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ تیار کر کے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے دشمنوں کے۔ چنانچہ اب ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے دونوں گروہ واضح ہو جائیں۔ چنانچہ آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایسی پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ صفیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ تقسیم جاری ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے، امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ، دجال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے یا اس جماعت کے ساتھ جس کے بارے میں مخبر صادق نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کی ایک جماعت حق کی طرف، حق کی خاطر حق پر ڈٹی رہے گی، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ ان کے آخر والے دجال سے قتال کریں گے۔ اہل حق حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس حق کو بچانے کی خاطر میدانوں کا رخ کر چکے ہیں اور دجال کے مقدمت الجیش سے ٹکرا رہے ہیں۔ اے سوئے ہوئے مسلمانوں، اپنے بارے میں فیصلے کرو اور رک کر سوچو کہ سفر کس سمت جاری ہے، زبانیں کس کے حق میں چل رہی ہیں، قلم کس لشکر کو مضبوط کر رہے ہیں، مال کہاں لگا رہے ہو۔ یہ جان رکھو، اب دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے، ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لشکر میں بھی رہو اور دجال کے اتحادی بھی ناراض نہ ہوں۔ اگر تمہارے اقدام سے عالمی دجالی قوت ناراض نہیں، तो फिर अपने इकदाम के बारे में सोचो कि ये कैसा हक है जिससे बातिल गुस्से में नहीं आता, ये कैसा सच है जिससे दज्जाल की दज्जालियत पर हर्फ नहीं आ रहा। हक की शान तो ये है कि बातिल चीख पड़े, ख्वा हक की आवाज पहाड़ों के घरों में लगाई जाए। मिंबरों मेहराब से दज्जाल का तस्किरा बंद हो जाना। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसके तस्किरे से गाफिल ना हो जाएं। यहाँ तक के अइम्मा मसाजिद भी मिंबरों पर उसका तस्किरा करना छोड़ दें। रावा अब्दुल्ला इब्ने इमाम अहमद, दुमदार सितारे का जाहिर होना। इब्ने अबी मलीका रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया, एक दिन मैं सुबह के वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। उन्होंने फरमाया, गुज़िश्ता रात मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने फरमाया, दुमदार सितारा तुलू हुआ है, मुझे अंदेशा हुआ कि दज्जाल आ गया है। हाकिम, इमाम हाकिम ने इसको बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है और हाफिज ज़हनी ने इससे इत्तफाक किया है। फायदा, दुमदार सितारे को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। इस सितारे को पीछे से रोशनी फूट रही होती है जो देखने में दुम की तरह नजर आती है। माहिर फलकियात ने इसको हॉली का नाम दिया है, जो कि बरतानवी साइंसदान एडमंड हॉली के नाम से मंसूब किया गया है। 25 मार्च 1996 को दुमदार सितारा वाजे देखा गया था। उसकी उम्र 10,000 साल बताई जाती है। जनवरी 2007 में भी ये देखा गया। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के साइंसदान इस सितारे पर मौजूद गर्द के जर्रात का कीमियाई तजुर्बा कर रहे हैं और खलाई गाड़ी को इसके साथ टकराने का कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। इनके बकौल इसमें बड़ी मकदार में कीमियाई मादे होते हैं। चश्मे और नहरें सूख जाएंगी। तर्जुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन उल आस रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, दज्जाल के आने की चंद मालूम निशानियां हैं। जब चश्मे या जेरे जमीन पानी नीचे चले जाएं और नहरों का पानी निकाल लिया जाए और घास मुराद सब्जा पीली हो जाए और कबीला मजहज और हमदान इराक से कंसरीन कूच कर जाएं, तो तुम दज्जाल का इंतजार करो कि सुबह आ जाए या शाम आ जाए। हाकिम, अस्मा बिनत यजीद अंसारिया ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए बयान किया, इससे पहले 3 साल होंगे, 1 साल आसमान अपनी एक तिहाई बारिश रोक लेगा और जमीन अपनी एक तिहाई पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश रोक लेगा और जमीन अपनी मुकम्मल पैदावार रोक लेगी। चुनाचा न खुर वाला और न दाढ़ वाला जानवर बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। रवाह अहमद फिल मसनद, दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी जब तुम कूफा वालों को देखोगे कि वो यहाँ से निकल रहे होंगे या निकाले जाएंगे, इस फुरात से एक कतरा भी ना पी सकेंगे। एक शख्स ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, हजरत हुजैफा की कुनियत, आप ऐसा गुमान क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया, मैं गुमान नहीं करता बल्कि इल्म रखता हूँ। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही है और हाफिज ज़हबी ने भी इसको तस्लीम किया है। हाकिम, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, करीब है कि तुम अपनी इस बस्ती में हाथ धोने के लिए पानी मांगो और वो तुम्हें ना मिले, सारा पानी अपने माखज की तरफ चला जाए। सो बकिया मुसलमान और पानी शाम में होंगे। हाकिम, हाकिम ने इसको सही कहा है और हाफिज जहबी ने भी इससे इत्तफाक किया है। फायदा, दरियाए फुरात पर तुर्की ने 13 डैम बना रखे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा डैम अतातुर्क डैम है, जो दुनिया के बड़े डैमों में शुमार होता है। इसको भरने के लिए दरियाए फुरात को 1 महीने तक मुकम्मल इसमें गिराना होगा। इस तरह शाम और इराक का पानी मुकम्मल बंद हो जाएगा। ये सूरत हाल ना सिर्फ इराक और शाम के लिए बल्कि दीगर खलीजी रियासतों के लिए भी सख्त दुश्वारी का सबब है। तुर्क पानी को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि हकीकत यह है कि इसराइल को खुश करने के लिए तुर्की की बददीन हुकूमत ऐसा करती रही है। वाजह रहे कि ये तमाम मंसूबे दज्जाल के आलमी इदारों के ताबून से मुकम्मल हुए हैं। इस वक्त इराक में दरियाए फुरात में बहुत कम पानी होता है, आम तौर पर इसमें 2 से 3 मीटर पानी रहता है। हजरत अरतात कहते हैं, दज्जाल के खुरूज की निशानियों में से ये है कि मशरिक से हवा होगी जो ना गर्म होगी और ना ठंडी। ये हवा इस्कंदरिया के बुत को ढा देगी, मगरिब और शाम के जैतूनों को काट देगी, फुरात और चश्मों और नहरों को सुखा देगी, और उसकी वजह से दिनों और महीनों के औकात और चांद के औकात भूल जाएंगे। मुहक्किक अहमद बिन शाबान ने इस सनद को लाबास बा के दर्जे की करार दिया है। इन अहदीस में वाजह बताया गया है कि दज्जाल के निकलने के वक्त पानी की आलमी किल्लत पैदा कर दी जाएगी, बारिशें कम हो जाएंगी, और जिस साल दज्जाल आएगा बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी। जिस हवा का इस आखिरी रिवायत में जिक्र है, इस हवा से चश्मे, नहरें और दरिया सूख जाएंगे। चश्मों को सुखाने के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंसूबे जारी हैं। सूबा सरहद और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ये बात मुशाहदे में आई है। वर्ल्ड बैंक के पैसे से जिन चश्मों पर टंकियां बनाई गई हैं, वो चश्मे बहुत जल्द सूख गए हैं, जबकि मकामी लोगों के पैसे से जिन चश्मों पर टंकियां बनाई गई, उन चश्मों की हालत कदरे बेहतर है। मौसमियाती तब्दीलियां, तर्जुमा, कुर्बे कयामत की अलामत में से एक जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाना है। फायदा, जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिसका तजुर्बा आप हजरात हर गर्मी और सर्दी में कर रहे हैं। यहूदी साइंसदानों ने हवाओं का दबाव कम ज्यादा करके मौसमों में तब्दीली लाने पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, और इसका कामयाब तजुर्बा 2008 के चीन में मुनक्किद ओलंपिक गेम्स में भी किया जा चुका है। 1987 ता 1992 के दौरान ईस्ट ट्रेंड के आर्को पावर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड के साइंसदानों ने एक ऐसा हथियार बनाया जो जमीन के आयोनी कुर्रा या मकनातीसी कुर्रे को तब्दील कर सकता है। 1994 में ये हथियार मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ई सिस्टम्स ने खरीद लिया और दुनिया में सबसे बड़ा आयोनी हीटर तामीर करने का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बुनियादी मकासद ये हैं: नंबर 1, इंसानी जहन को इंतशार का शिकार करना। नंबर 2, कुर्रे अर्थ के तमाम मवासलात कम्युनिकेशन के निज़ाम को जैम करना। नंबर 3, किसी भी इलाके में मौसम तब्दील करना। नंबर 4, जानवरों की नकल मकानी के अंदाज में मदाखलत करना। नंबर 5, इंसानी सेहत को मनफी अंदाज में तब्दील करना। नंबर 6, जमीनी फजा की बालाई सतह पर गैर फितरी असरात मुरतब करना। इस हकीकत को जहन में रखिए कि इस्लाम दुश्मन दज्जाली क़ुव्वतें मौसमों पर असरअंदाज होने की सलाहियत हासिल कर चुकी हैं, और फिर मंदरजा ज़ेल खबरों को पढ़िए। पाकिस्तान, संगीन मौसमियाती तब्दीलियाँ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं, और इससे तहफ्फुज़, आबी वसाइल, ज़राअत, तवानाई, सेहत, मौसमी शिद्दत, जंगली हयात की बका और सहरा जदगी जैसे संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं। सिंध बलूचिस्तान के बंजर साहिली इलाकों के दर्जा हरारत में 1.6 से लेकर 1 सेंटीग्रेड तक इजाफा हुआ है। खुश्क मैदानी और साहिली इलाकों में मौसम में गर्मा और सर्मा की मामूल की बारिशों में औसत 10 ता 15% कमी आई है। आब होगा कमयाब, दरियाओं की तुगयानी खुश्क साली का पेश खेमा, बर्फ में रिकॉर्ड कमी, इंसान खुद भी आबो हवा की तब्दीली पर असरअंदाज, पानी की आलमी किल्लत, अमीर ममालिक के पानी के जखायर में कमी। 2003 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत अहम था, जिसमें खिलाफ मामूल ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी जड़ें मौसमियाती तब्दीलियों से जा मिलती हैं। उस बरस जून में मुल्क में शदीद गर्मी की लहर रही, हार के बाद भी कई प्रोजेक्ट मौसम पर असरअंदाज होने की सलाहियत हासिल करने के लिए शुरू किए गए। इनमें सबसे खतरनाक 2008 में किया जाने वाला बिग बैंग नामी वो तजुर्बा था, जिसका मकसद तखलीक कायनात के राज का पता चलाकर कायनात में तब्दीली की सलाहियत हासिल करना था। हार्क के मकासद में ये चीजें शामिल थीं, अलबत्ता मीडिया पर इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह कुछ और बताई जाती है, जिसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को, हकीकत का इल्म ना हो सके। मसलन कारखानों और गाड़ियों की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा, हालांकि ये सरासर झूठ और आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। यहूदी साइंसदान ये सब दज्जाल के लिए कर रहे हैं। यहूदी ये समझते हैं कि जब वो निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी, जिनकी खबर तौरात, इंजील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो इन यहूद का झूठा खुदा जाहिर हो जाएगा। फैशन या दज्जाल का हुलिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तमाम तफसीलात बयान फरमाई हैं। उसकी आंख और बालों के दरमियान में खुसूसी तौर पर तफसील बयान फरमाई है। नया हेयर स्टाइल या दज्जाल के बाल। दज्जाल के बालों के बारे में कई अहादीस हैं। नंबर 1, जादुर राज यानी सख्त घुंघरियाले बाल वाला, सही बुखारी। नंबर 2, जुफालु शार यानी बहुत घने रूखे बालों वाला, सही मुस्लिम। नंबर 3, अनहु शहाब तक, वो छोटे सख्त घुंघरियाले बालों वाला होगा, मुस्लिम। नंबर 4, रासा मनवरा हुबुक हुबुक, सर में पीछे की जानिब बालों की गुच्छियां बनी होंगी सख्त उलझे हुए होने की वजह से, मसनद अहमद। इब्ने हजर ने फतहुल बारी में लिखा है, उसका सर देखने में ऐसा लगेगा जैसे दरख्त की टहनियां, ज्यादा घने और उलझे हुए बालों की वजह से। फायदा यानी उसके बाल खुरदुरे, खुश्क, बेरौनक, जिनमें कोई चमक नहीं होती, बुरी तरह उलझे हुए बहुत ज्यादा होंगे, देखने में गोया झाड़ झंकार की तरह नजर आएंगे, जबकि पीछे सख्त उलझे हुए बालों की गुच्छियां बनी होंगी। बाल अगर हल्के घुंघरियाले हों तो वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन दज्जाल के बाल सख्त घुंघरियाले और बगैर चमक के बिल्कुल रूखे होंगे। इन बालों को अगर काट कर छोटा कर दिया जाए तो इनमें मांग नहीं निकल सकती, बल्कि ये सीधे खड़े रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के इश्तहारात में दोनों किस्म के बाल वक्तन फवक्तन नजर आते रहते हैं, यानी बड़े बड़े घुंघरियाले भी और सीधे खड़े बाल भी। इस हेयर स्टाइल को धीरे धीरे फैशन में लाया जा रहा है। दज्जाल की आंख और मल्टीनेशनल कंपनियां। दज्जाल काना भी होगा और भेंगा भी, एक आंख से बिल्कुल बेकार होगा। उसकी बाई आंख ऐसी होगी गोया चमकदार सितारा। बास दोस्तों ने बताया कि जियो टीवी चैनल का लोगो जीम है, जो आंख की मानिंद है। कभी कभी ये आंख इस तरह दिखाई जाती है जैसे इससे बहुत तेज रोशनी फूट रही होगी। मसनद अहमद और इब्ने हबान की रिवायत में है, दज्जाल की आंख सब्ज होगी, जैसे कांच या कंदील। सोनी एरिक्सन के मोबाइल पर आपने सब्ज रंग का गोल निशान देखा होगा। अगर किसी बड़े इश्तहार में इसको देखें तो ये आंख का निशान है जो सब्ज है। दज्जाल चूंकि तमाम जाहिरी और बातनी खराबियों का मजमुआ है, उसका रंग, बाल, आंख, जिस्म, हर चीज ऐसी है जिसको देखकर इंसान उससे नफरत करने लगे। लेकिन यहूदी इदारे दज्जाल की इन खामियों को इस तरह बनाकर पेश कर रहे हैं कि लोग इसको अच्छा समझने लगे। दज्जाल की आंख और बालों के हवाले से इनकी मेहनत मुसलसल जारी है। बुरी बुरी शक्लों वाले कार्टून दिखाकर बच्चों को अभी से गंदी शक्लों से मानूस किया जा रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों के इश्तहारात पर एक आंख का निशान आप देख सकते हैं। कहीं आंख बाहर को निकली हुई होती है, कहीं आंख के अंदर सफेद धब्बा दिखाया गया होता है। कैमरे, सेंसर आलात, कारों के हेडलाइट्स, नई गाड़ियां, गर्ज, बेशुमार मसनूआत हैं जिनको आंख की शक्ल का बनाया जा रहा है। इस एक आंख के बारे में यहूदियों ने ये बात फैलाई है कि ये नजरे बद से बचाने वाली आंख है। इसको वो ईवल आई कहते हैं। हमारे टीवी ज्यादा मुसलमान बेचारे कुछ सोचते तो हैं ही नहीं, बस जो देखा उसकी नकल करनी शुरू कर दी। चुनाचा ये एक आंख अब लोगों ने गलों में भी लटकानी शुरू कर दी है। तस्बीहात के अंदर भी ये आंख आ रही है। ये दरहकीकत शर की आंख, डेवल्स आई है। ये दज्जाल की आंख है जिससे लोगों को मानूस किया जा रहा है। एक आंख से देखने का मुहावरा तकरीबन हर जबान में मौजूद है जो इंसाफ पसंद के लिए बोला जाता है। ये भी दर हकीकत दज्जाल की एक आंख से लिया गया है जिसको यहूदी अदबियों ने हर जबान के अदब में शामिल कर दिया है। दज्जाल की जन्नत और जहन्नुम। तर्जुमा, और इस दज्जाल की बाई आंख ऐसी होगी गोया चमकता हुआ सितारा। उसके साथ जन्नत के मिस्ल और जहन्नुम के मिस्ल जन्नत और जहन्नुम होगी। सो उसकी जन्नत सरसब्ज और शादाब बाग होगी और उसकी जन्नत गर्द के रंग की तरह धुएं वाली होगी। इस हदीस को मशहूर मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने अपनी किताब किस्सतुल मसीह दज्जाल में कई तरीके से नकल किया है और इस हदीस को हसन कहा है। फायदा, इस हदीस में दज्जाल की जन्नत के लिए मिस्ल का लफ्ज आया है, यानी उसके साथ जन्नत के मिस्ल और जहन्नुम के मिस्ल दो चीजें होंगी। दूसरी चीज जो इसमें गौर तलब है वो ये है कि उसकी जन्नत गर्द गुबार की तरह धुएं वाली होगी। ये कैसी जन्नत होगी जो गुबार आलूद और धुएं वाली होगी? बाज मुहक्किकीन का ख्याल ये है कि दज्जाल ये मंजर लेजर शुआओं के जरिए तख्लीक करेगा। किसी भी जगह पर लेजर शुआएं डालकर कोई भी मंजर तख्लीक किया जा सकता है, लेकिन किसी जगह पर बड़ी मकदार में लेजर शुआएं पड़ने के नतीजे में उस जगह का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और वो जगह इंसानी जिल्द और दिमाग के लिए सख्त अजाब का बायस होगी। शदीद गर्मी के मौसम में आपने किसी तपती हुई जमीन को देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर गुबार और धुआं मौजूद हो। इसी तरह काने दज्जाल की जन्नत भी हो सकती है। साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि लेजर शुआएं इंसानी दिलो दिमाग के लिए खतरनाक हैं। एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैंसर का सबब बन सकता है। चुनाचा अंदाजा कीजिए कि जहां लाखों मोबाइल की मकदार से भी ज्यादा शुआएं पड़ रही हों, वहां की जमीन का क्या आलम होगा। इसमें दाखिल होने के बाद कोई भी इंसान अजियतनाक बीमारियों में मुब्तिला हो जाएगा। दज्जाल की जन्नत और जहन्नुम के बारे में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है। तर्जुमा, या तो दज्जाल जादूगर होगा जो किसी भी चीज को उसकी हकीकत के बरखिलाफ बनाकर दिखा देगा, या अल्लाह ताला दज्जाल की जन्नत को अंदर से जहन्नुम बना देंगे और उसकी जहन्नुम को जन्नत। यही बात राजे है या ये किनाया है। इसकी जन्नत से मुराद उसकी नेमतें और नवाजिशें हैं और उसकी जहन्नुम से मुराद उसकी नाराजगी है। जो उसकी अताअत करेगा उसको अपनी जन्नत दे देगा जिसका अंजाम आखिरत में जहन्नुम है। यही मामला उसकी जहन्नुम का होगा। उसके जहन्नुम की वजाहत मुस्लिम शरीफ की इस रिवायत में भी मिलती है। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ दज्जाल के पास होगा उसका मुझे अच्छी तरह इल्म है। उसके साथ दो नहरें जारी होंगी, एक आंखों देखा सफेद पानी होगा और दूसरी आंखों देखती देखी भड़कती हुई आग होगी। सो अगर कोई उसको पाए तो वो इसमें खुद को डाल दे जिसको वो आग कहता है, और आंखें बंद कर ले, फिर सर को झुकाए और उससे पानी पिए तो वो इस नजर आने वाली आग को ठंडा पाएगा। मुस्लिम शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंखों देखी आग हो खुद को उसमें डाले, आंखें बंद करे और सर झुकाकर इससे पिए, उसको ठंडा पानी पिएगा। ए अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा मानने वालों, फिर क्या वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जाहिरी कुव्वत देखकर तुम खौफजदा हो जाते हो? अमरीकी बमबारी के खौफ से अपने कलमा गो मुसलमानों का कत्लेआम कराते हो, अपनी जमीन में से उनको असलहा बारूद और सामान तायुश पहुंचाते हो। दज्जाल के वक्त में उस वक्त से सख्त हालात होंगे, इसके बावजूद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तसल्ली दे रहे हैं कि उसकी आँख को देखकर ईमान का सौदा नहीं कर देना, बल्कि इसमें कूद जाना। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसको ठंडा पानी बना देंगे। ऐ लोगों, इस्लाम पर राजी होने के बाद इस्लामी अहकामात से क्यों मुतनफिर होते जा रहे हो? ईमान लाने के बाद क्यों अल्लाह की ताकत और बड़ाई का इनकार करते हो? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को सच्चा मानने के बाद दज्जाल की दज्जालियत में क्यों डूबे हो? अल्लाह की जन्नतों को छोड़कर दज्जाल की सजाई जन्नत की तरफ क्यों दौड़े लगे हो? क्या मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर ईमान कमजोर हो गया है? दज्जाल की सवारी या उड़नतश्तरी। पिछले बाब में आप उड़नतश्तरियों के बारे में जान चुके हैं, आइए अब ज़बाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल की सवारी के बारे में तफसीलात जानते चलें। दज्जाल की सवारी के बारे में जो सही अहादीस मिली हैं, जिनको दलील और हुज्जत के तौर पर पेश किया जा सकता है, उनमें एक मुस्लिम शरीफ की है और दूसरी हाकिम की है। नंबर एक, मुस्लिम शरीफ में नवास बिन समान रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक तवील रिवायत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सवारी की रफ्तार को बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तेज हवा बारिश को उड़ा ले जाती है, गैस के माने बारिश के हैं। उलमा ने गैस का तर्जुमा गैम यानी बादल से किया है, जिसका मतलब है कि इस बादल के मानिंद जिसको तेज हवा उड़ा ले जाती है, लेकिन अगर इसको हकीकी मानी बारिश ही मिले तब भी दुरुस्त है। फिर आप यूं समझिए कि बादल मुजफ्फराबाद के ऊपर हो और बारिश बादल से निकले, लेकिन उस वक्त अगर तेज हवा चल पड़े तो ये बारिश कराची में जाकर गिरेगी। मुजफ्फराबाद से कराची का फजाई फासला 1200 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी रिवायत में हाकिम की है, इमाम हाकिम ने इसको सही कहा है और इमाम जहबी ने इससे इत्तफाक किया है। उजैफा इब्ने असियत से रिवायत है, इस दज्जाल के लिए जमीन ऐसे लपेट दी जाएगी जैसे मेंढी की खाल लपेट दी जाती है। फायदा, जमीन के लपेट दिए जाने की इस्तलाह को तसव्वुफ में तई अर्ज कहते हैं। इसमें जमीन सिमट जाती है और जमानो मकान स्पेस टाइम के फासले मिट जाते हैं। एक कदम मशरिक से मगरिब में पहुंचता है। तसव्वुफ की इस इस्तलाह से बहुत सो को इख्तलाफ हो सकता है। चलिए, मौजूदा साइंस में इसका जवाब मौजूद है, देखते हैं। अगर थोड़ी तफसील तबीयत पर गिराना गुजरे तो तफसील समझिए, और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात इस टेक्नोलॉजी के दौर में देखिए और तमाम झूठे नबियों और झूठे खुदाओं के मुंह पर थूकिए। वक्त के एतबार से जमीन के फासलों का तय होना। इसका ताल्लुक दो चीजों से है, एक हरकत या रफ्तार मोशन, दूसरी कशिश सकल। ये दोनों चीजें वक्त पर असरअंदाज होती है। यानी अगर आप 1,000 किलोमीटर का फासला तय करना चाहते हैं बजरिया बस, 20 से 22 घंटे लगते हैं, जबकि बजरिया तैयारा 2 घंटे, फासला एक ही है, लेकिन तेज हरकत वक्त पर असरअंदाज होती है। हरकत तेज होने की वजह से फासले सिमट गए, लेकिन एक चीज दोनों सूरतों में वक्त पर असरअंदाज हो रही है, वो है कशिश सकल। ये कशिश वक्त पर कई एतबार से असरअंदाज होती है। इनमें से एक का वक्त का थम जाना या किसी और जहत में चले जाना, इसको टाइम वॉर्प कहते हैं। अगर इस कशिश सकल को खत्म कर दिया जाए, एंटी ग्रेविटी, तो फिर इंसान खुद ही हवा में उड़ने लगेगा। इस कशिश की कुव्वत को बतौर तवानाई के इस्तेमाल करने पर कुदरत हासिल हो जाए, तो फिर इसकी रफ्तार नाकाबिले यकीन हो जाएगी। उड़न तश्तरियों पर तहकीक करने वाले डॉक्टर जयसूब के मुताबिक उड़न तश्तरियों में कुव्वत कशिश इस्तेमाल होती है, जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक कुव्वत कशिश की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर यानी 2,99,300 किलोमीटर की फी सेकंड है। नीज उड़न तश्तरियों में लेजर टेक्नोलॉजी, मौजूदा साइंस अभी इसको मुकम्मल नहीं समझ पाई, भी इस्तेमाल हुई है। लेजर लाइट के बारे में जदीद तहकीक ये है कि उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा है। इससे पहले साइंसदानों का, खुसूसन आइंस्टाइन का ये दावा था कि कायनात में सबसे ज्यादा रफ्तार रोशनी की है, इससे ज्यादा कोई और रफ्तार नहीं है। लेकिन अमरीकी माहिर तबीयात ने सन 2000 में एक तजुर्बे के दौरान लेजर शुआ को इससे भी तेज पाया। इस तरह उड़न तश्तरी वालों के लिए जमानो मकान के फासले खत्म हो जाते हैं, वक्त रुका हुआ महसूस होता है। इस कुव्वत कशिश के खत्म होने और इसको तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने को आप तई अर्ज कह लें, या जमानो मकान के फासलों को खत्म होना कह लें, या फिर वक्त के थम जाने का नाम दे दें, इस सूरत में एक कदम मशरक में और दूसरा मगरब में जाएगा और जमीन लिपट जाएगी। हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में गौर कीजिए, इसके लिए जमीन लपेट दी जाएगी। जमीन का लिपटना सिर्फ उसकी तेज रफ्तारी वक्त की वजह से नहीं है, बल्कि हदीस में इशारा एक और चीज की तरफ भी है, वो ये कि दज्जाल को कुव्वत कशिश पर भी अख्तियार होगा, जिसकी वजह से वक्त थम जाएगा। चुनाचा तय्युल अर्ज का ताल्लुक जमान व मकान दोनों से है। इसी बहस से मुताल्लिक मिसाल मौजा वाकया मेराज है। हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दज्जाल के गधे के कानों के साए में 70,000 अफराद आ जाएंगे। दज्जाल की सवारी, कुछ जईफ रिवायात। दज्जाल की सवारी के बारे में दीगर अहादीस की किताबों में मुतादिद रिवायात आई हैं, लेकिन ये ज़ईफ हैं। नंबर एक, नईम इब्ने हम्माद ने अपनी किताब अल फतन में ये रिवायत नकल की है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। ये हिस्सा सही अहादीस में भी है, और इसके गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा, और वो अपने गधे पर सवार होकर समंदर में ऐसे घुस जाएगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर छोटी नाली में घुस जाते हो। दज्जाल की आवाज मशरक व मगरिब में सुनी जा सकेगी। कंजुल आमाल। नंबर दो, उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि सूरज से पहले उसके गुरूब होने की जगह पहुंच जाएगा। नंबर तीन, उड़ने के साथ साथ समंदर में दाखिल होना और समंदर पार करने की सलाहियत भी इस सवारी में मौजूद होगी, फजा में मौलिक हो जाएगी। नंबर चार, उसकी सवारी दुम कटा गधा होगी। नंबर पाँच, चमकदार रोशन गधे पर सवार होगा। इसकी सवारी के कानों के साए में 70,000 अफराद आ जाएंगे। कंजुल आमाल। उड़न दश्तरी भी बहुत ज्यादा चमकती है, बिल्कुल चांद की तरह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ और सना की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर फरमाया, ए लोगों, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो बैठो। ये बात 3 बार फरमाई। अल अब्दी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, पूछा, दज्जाल कब निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, ए अब्दी, अल्लाह ने आपका मकाम जान लिया और आपकी बात सुन ली। इस बारे में मसूल साइल से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता दज्जाल के खुरूज की कुछ निशानियां, असबाब और फितने हैं, वो एक दूसरे के नक्शे कदम पर चलेंगे। इस रिवायत का आखिरी हिस्से में है, जिसने इस दज्जाल को झूठा कहा वो कामयाब हुआ, और जिसने उसकी तस्दीक की वो नामुराद हुआ। आगाह रहो, वो खाता पीता होगा और बाजार में जाता होगा, हालांकि अल्लाह ताला इन चीजों से बेनियाज है। सुनो, दज्जाल की सवारी की लंबाई पहले हाथ से लेकर 40 हाथ तक होगी। उसके नीचे चमकदार गधा होगा, हर कान की लंबाई 30 गज होगी। उसके एक कदम से दूसरे कदम के माबैन 1 दिन और 1 रात की मुसाफत होगी। उसके लिए जमीन लपेट दी जाएगी। अपने दाएं हाथ से बादल को पकड़ लेगा और सूरज से पहले उसके गुरूब होने की जगह पहुंच जाएगा। समंदर में पिंडियों तक घुस जाएगा। उसके आगे धुएं का पहाड़ होगा और उसके पीछे सब पहाड़। ऐसी आवाज लगाएगा कि इसको मशरिक व मगरिब में सुना जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे पास आओ। मेरे दोस्तों, मेरे पास आओ। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे पास आओ। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे पास आओ। मैं वो हूँ जिसने पैदा किया पस बराबर किया, और जिसने अंदाजा किया पस हिदायत दी, और मैं तुम्हारा रब आला हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा, वो तुम्हारा रब नहीं है। जान लो, उसके अक्सर मानने वाले और साथी यहूदी यहूदियों की औलाद होंगे। इसमें हम्माद इब्ने उमर रावी मतरूक हैं, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ है। ज़रूरी वजाहत, उड़न दश्तरी दज्जाल की सवारी है। ये नज़रिया मोहम्मद ईसा दाऊद का है। राकिम को इस पर कोई इसरार नहीं। राकिम का नज़रिया ऐसे तमाम मसाइल में यह है कि जो बात सही अहादीस से साबित हो वही काबिल तरजीह है। नीज सलफ सालिहीन की आरा को नकल करने में ही निजात है कि अगर कोई ऐसी बात कही जाए तो उन्हीं हजरात के इल्म की रोशनी पर इस पर लब कुशाई की जाए। यूं भी ये कोई अकीदे से मुताल्लिक मसला नहीं है कि दज्जाल गधे पर आएगा या हवाई जहाज पर या फिर उड़न तश्तरी पर। असल ये है कि वो जरूर आएगा, और उसकी सवारी की रफ्तार वही होगी जो जवान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की गई है। अब ख्वाह वो गधा हो या कुछ और, दज्जाल की ताकत। नंबर 1, दज्जाल मादरजात अंधों और बर्स के मरीजों को सही कर देगा। मसनद अहमद। नंबर 2, मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, जिंदे को मारकर फिर जिंदा करेगा। उसके हुक्म से बादल बादल बारिश बरसाएगा। नहर को हुक्म देगा कि रुक जा तो रुक जाएगी, और चलने का हुक्म करेगा तो चल पड़ेगी। जमीन सरसब्ज व शादाब हो जाएगी। जो इस पर ईमान नहीं लाएगा उसके मवेशी मर जाएंगे। खेती बाड़ी को तबाह कर देगा। पानी के जखायर से उनको महरूम कर देगा। उनके कब्जे में खाने और पीने के जखायर होंगे। एक हाथ में आग और दूसरे में जन्नत होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम। नंबर 3, जमीन में जलजला पैदा करने की सलाहियत उसके पास होगी। अबू दाऊद। नोट, दज्जाल के बारे में मजीद तफसील के लिए राकिन की किताब तीसरी जंग अजीम और दज्जाल देखिए। दज्जाल पर सबसे भारी बनू तमीम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, मैं बनू तमीम से 3 वजह से मोहब्बत करता हूँ, जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में फरमाते हुए सुना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि वो बनू तमीम میری امت میں دجال پر سخت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنو تمیم کے صدقات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ محبت کی تیسری وجہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم کی ایک قیدی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بنو تمیم کے بارے میں دجال کے بجائے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ بنو تمیم ملاحم آخری دور کی گھمسان کی جنگوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت قتال کرنے والے ہیں۔ فائدہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو تمیم میں سے تھے، یہ قبیلہ آج بھی یمن و حجاز اور عراق میں موجود ہے اور افغانستان سے لے کر عراق تک جہاد کے میدانوں میں دجالی قوتوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایمان والوں کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خوز اور کرمان سے جنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم خود خوز اور کرمان سے جنگ نہ کر لو، جو کہ اجمیوں میں سے دو قومیں ہیں، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے، چھوٹی آنکھوں والے، گویا ان کے چہرے تہ بہ تہ ڈھال ہوں گے، ہوں ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ فائدہ، اس حدیث میں خوز اور کرمان والوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے، ایسی ہی دوسری حدیث ترکوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن ابن حجر نے فرمایا وہ الگ حدیث ہے۔ خوز مغربی ایران میں ہے اور خوزستان کے نام سے مشہور ہے، خوزستان کا مرکزی شہر اہواز ہے، یہاں کی صنعت تیل اور ٹیکسٹائل ہے۔ ایران عراق جنگ میں یہ علاقہ عراقی بمباری کا بری طرح نشانہ بنا۔ کرمان جنوب مشرقی ایران کا ایران کا صوبہ ہے اور اس کا دارالحکومت بھی کرمان ہی ہے، یہاں کی مرکزی صنعت قالین ہے۔ صوبہ کرمان کے دیگر بڑے شہر سرجان، جراف اور رفسنجان ہیں۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال خوز اور کرمان میں 80,000 لوگوں میں اترے گا، جو پیروں میں بال پہنتے ہوں گے اور تلیسانی چادریں اوڑھے ہوں گے، گویا ان کے چہرے تہ بتہ ہوں گے۔ مسند ابن یعلی، فائدہ، ترکوں اور خوز اور کرمان والوں کے چہرے ایسے ہوں گے گویا وہ تہ بتہ ڈھال ہوں، یا تو حقیقی معنی مراد ہیں یا پھر چہروں پر گیس ماسک چڑھے ہوں گے۔ دجال ایران تعلق، اہم سوال، دجال اور اس کے حواریوں کے بارے میں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق موجودہ ایران کے شہروں کے ساتھ ہے۔ دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے۔ خوز اور کرمان کے بارے میں بھی صحیح روایات گزر چکی ہیں، ان احادیث کے کیا معنی لیے جائیں اور اس سے کیا سمجھا جائے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایران پر مکمل یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، دوسری یہ کہ حکومتیں اسی طرح رہیں گی لیکن اصل حکمران یہودی ہوں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایران میں یہودی قدیم زمانے سے بسے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے بعض قبیلوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا لیکن اصلاً یہودی ہی رہے۔ ایسا ہی ایک فرقہ اصفہان، رفسنجان، مشہد اور ایران کے دیگر اہم شہروں میں آباد ہے، جو جدید اسلام کے نام سے مشہور ہو رہا ہے۔ اصفہانی یہودی تمام یہودی قبائل میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اصفہانی یہودی کئی مرتبہ حکومت اسرائیل کی اس درخواست کو مسترد کر چکے ہیں جس میں اسرائیل نے انہیں اسرائیل میں آ کر بسنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ ایرانی یہودیوں نے اسرائیل کے بجائے امریکہ اور فرانس جانے کو ترجیح دی۔ ایرانی یہودی حاقام ید یاشوفت کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں۔ یوں تو ایران کی یہودی ماؤں نے ایک سے ایک بڑا یہودی جنا ہے، लेकिन यहाँ इख्तसार से काम लेते हुए सिर्फ दो यहूदियों का जिक्र मुनासिब होगा, इब्राहिम नाथान अल मारूफ मुल्ला इब्राहिम और आगा खान अव्वल 1881। मुल्ला इब्राहिम ने बुखारा, तुर्किस्तान, काबुल और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जड़ों को खोखला किया, जबकि आगा खान खानदान पहले हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान के मुसलमानों के नसीब में आया। आगा खान अव्वल ईरान में किरमान सूबे का गवर्नर था। 1840 में पूरे ईरान पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरान से भागकर हिंदुस्तान चला गया। तकसीम के बाद यह खानदान कराची आ गया। अगर आप यहूदियों की मखसूस अलामत और रंगों के बारे में जानते हैं तो अस्फहान में आपको हर जगह ये बड़ी तादाद में मिलेंगी। नक्शो निगार नीले टाइल्स से बनी इमाम बारगाहें, इन पर मखसूस अलामतें। इस्फहानी यहूदी ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ईरान से यहूदियों की मोहब्बत की वजह तारीखी है। यहाँ हजरत दानियाल अलैह सलाम का मकबरा है, हजरत बिन्यामीन का जस्द है, नबी सारावत आशर का मकबरा है, एक और नबी अस्तरो मर्द खाई का मकबरा हमदान में है। अस्फहान ही के अंदर यहूदियों का बहुत बड़ा मरकज कायम है। ईरान की पॉलिसियों में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईरान की जाहिरी तशख्खुस के बिल्कुल बरक्स हैं। ईरान अमरीका तजारती ताल्लुकात, ईरान भारत गहरी दोस्ती की जड़ें, हत्ता के पाकिस्तान से भी ज्यादा। अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे पर खामोशी, बल्कि अब अमरीका के साथ खुफिया तआवुन, पाकिस्तान के अंदर स्टेट के खिलाफ शियों को इस्तेमाल करना, पाक भारत तनाजात में पाकिस्तान का साथ ना देना वगैरह। ईरान और हिजबुल्लाह। मसला फलस्तीन के बारे में अगर हम गहराई से ईरानी पॉलिसी का जायजा लें तो ये उर्दनों मिस्र की पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं, फर्क सिर्फ बयानबाजी का है। लबनान की हिजबुल्लाह को ईरानी हिमायत ईरान को और ज्यादा मशकूक बना देती है, क्योंकि हिजबुल्लाह वो तंजीम है जिसकी परवरिश इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद करती है, ताकि लबनान में मौजूद हकीकी मुजाहिदीन को इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों से रोका जा सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे इराक में CIA ने मुक्तदा उस सदर की मेहदी मलेशिया को अलकायदा के मुकाबले में खड़ा किया। ये बातें अखबारात पढ़ने वालों के लिए शायद अचंभे की हों, लेकिन जिन लोगों के पास मैदान जिहाद से खबरें आती हैं वो हिजबुल्लाह को इसी तरह जानते हैं जैसे मोसाद को। इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ जंग एक ड्रामे के सिवा और क्या है, जिसका मकसद अरब मुजाहिदीन की तवज्जो इराक से हटाकर लबनान की तरफ करना था। दूसरा मकसद आलम इस्लाम, खुसूसन अरब दुनिया में अलकायदा की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोक कर हिजबुल्लाह को उसके हम पल्ला साबित करना था। इस जंग की तफसील का अगर आप मुताला करें तो खुद आप देखेंगे कि ये एक स्टेज ड्रामा था जिसकी कहानी वॉशिंगटन और तल अबीब में लिखी गई, और हीरो का किरदार बैरूत के आरामदेह कमरे में बैठे हसन नसरुल्ला को सौंपा गया। ईरान और मुक्तदा सदर, आप जरा गौर फरमाइए, हसन नसरुल्ला अमरीका इसराइल का इतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन दौरान जंग भी वो मुजाहिरों में शरीक रहा और उसका टीवी स्टेशन भी चलता रहा। यही मामला इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता मुक्तदा सदर का है। मुक्तदा सदर को इस वक्त खड़ा किया गया जब अबू मोसिब जरकावी शहीद ने हर मैदान में अमरीकियों को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया और उनकी तमाम टेक्नोलॉजी को कबाड़ में तब्दील करके सारी दुनिया को दिखाया। ऐसे वक्त में CIA की जानिब से मुक्तदा सदर को हीरो बनाकर पेश किया गया। जरा गौर फरमाइए, वो अमेरिका को धमकियां भी देता है, अस्करी कार्रवाइयों का दावा भी करता है, इसके बावजूद भी वो बड़े बड़े जलसे जुलूस से खिताब कर रहा होता है। दूसरी जानिब इराक ही में अलकायदा क्यादत के बारे में अमरीकी रवैया भी मुलाहिजा फरमाइए। अबू मोसिब जरकावी शहीद रहमतुल्ला अलैह की तलाश में CIA और मोसाद पागल हो रही थी, और ड्रोन तैयारे सैटेलाइट और मोबाइल बोस्टर सब जरकावी शहीद के पीछे लगे हुए थे। इधर अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में देख लीजिए, अमरीकी ड्रोन तैयारे दिन रात एक किए हुए हैं और आए दिन अलकायदा अरकान की शहादत के वाकयात हो रहे हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि हिजबुल्ला या मुक्तदा सदर की महदी मलेशिया का कोई जिम्मेदार अमरीकी ड्रोन का निशाना बना हो? उनकी मामूली कार्रवाई को दज्जाली मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, गोया उन्होंने अमरीका और इसराइल तबाह कर दिया हो। जबकि अलकायदा की बड़ी से बड़ी कार्रवाई को छुपाए छुपाने या फिर मुश्तबा 9/11 की तरह बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह के ग्रुप यहूदी मंसूबों को दूसरे अंदाज में परवान चढ़ाने के लिए खड़े किए गए हैं, ताकि जहाद के समरात को नुकसान पहुंचाया जाए। ये हसन नसरुल्ला ही था जिसने 11 सितंबर के अमरीकी हमलों को यहूदियों की कार्रवाई करार देकर मुसलमानों के बढ़ते हुए हौसलों को दबाने की कोशिश की, नेज अलकायदा की मकबूलियत का जोर तोड़ना चाहा, ताकि अरबों से मिलने वाली करोड़ों डॉलर अलकायदा की तरफ ना चले जाएं। हिजबुल्ला और मुक्तदा सदर की मेहदी मलेशिया के बारे में वाकिफान हाल को कोई शक नहीं कि उनको अमरीका और इसराइल ने खुद को खड़ा किया। इसका जो फायदा इन दोनों दज्जाली कुव्वतों को हुआ है वो भी सामने है, लेकिन जो बातें काम आदमी के लिए परेशानी और फिक्र का बाइस है वो इन ग्रुपों को ईरान की हिमायत है। ईरान पर यहूदी असरात या कुछ और? इसके जवाब में दो ही बातें कही जा सकती हैं। नंबर एक, ईरान की खारजा पॉलिसी खुसूसन अस्करियत से मुताल्लिक ईरानी यहूदी बनाते हैं। नंबर दो, या फिर ईरानी हुकूमत आलम इस्लाम के मसाइल को इस्लामी नुक्ता नजर के बजाय मसलकी यानी शिया नुक्ता नजर से देखती है और इसी को सामने रखकर अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है, और वो कभी ये नहीं चाहती कि कोई सुन्नी तंजीम कहीं भी मजबूत हो, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी अक्सर यहूदी मफादात को परवान चढ़ाने का बायस बनती है। शायद यही वजह है कि जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की आईएसआई की कामयाबियां ईरान को कभी अच्छी नहीं लगी। मजीद समझने के लिए सऊदी अरब, फलस्तीन, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में ईरानी पॉलिसी का मुताला काफी है। अगर ईरान की मौजूदा मौशी, इकतसादी और अस्करी सूरत हाल का जायजा लें तो इसमें यहूदी असरात बहुत नुमायाँ नजर आते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि ईरान का मौजूदा सदर महमूद अहमदी नेजाद आला पाए का फ्री मेसन है तो यकीनन आप चौंक जाएंगे। इसके अलावा चंद बातें और सुनते चलिए। ईरान का सरकारी निशान क्या है? आप उसके झंडे पर देख सकते हैं, फिर इस निशान की हकीकत भी खुद ही तलाश कर लीजिए। ये निशान यहूदियों के यहाँ जादू में बड़ा मौसर समझा जाता है। ईरान के सरकारी तैयारे पर शैतान बुजुर्ग की तस्वीर बनी हुई है जो कि सरकारी निशान है। ये डेगोन है, धड़ से निचला हिस्सा मछली और ऊपरी हिस्सा नंगा बूढ़ा, जिसके सर पर इबलीस का ताज रखा हुआ है। ये रिस्क का खुदा है, यहूदियों के यहाँ 2500 कबले मसीह से पूजा जाता है। ईरान के बारे में आमतौर पर यह ख्याल है कि वहाँ इस्लामी तर्ज हुकूमत है। ये भी दज्जाली मीडिया का फरेब है। जो लोग ईरान में रहकर आए हैं, आप कभी इनसे ईरान के इस्लामी माशरे के बारे में पूछिएगा, जितने गुनाह ईरान के अंदर हैं शायद कई मगरबी ममालिक में भी ना हो। अलबत्ता ईरान में हर चीज इस्लामी लेबल लगाकर फरोख्त की जाती है। शराब हो, सूद हो या हिजाब, हर चीज पर इस्लाम चस्पा कर दिया गया है। बात शायद लंबी हो गई। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना था कि दज्जाल के बारे में जो सही अहादीस आई हैं, इनमें से अक्सर का ताल्लुक ईरान के साथ है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया आलमी निजाम या नया आलमी मजहब। दज्जाल के आने से पहले यहूदी बैंकार दुनिया में एक नया आलमी मजहब नाफिज करना चाहते थे। चुनाचा 1992 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से दुनिया में इस निज़ाम को मुतारिफ कराया गया। ये दरहकीकत एक नया मजहब है जिसकी बुनियाद ख्वाहिशात पर कायम है। आलमी इदारे सारी दुनिया में इस नए मजहब को राइज करने के लिए मुतहर्रिक हुए, और आप सोचकर हैरान होंगे कि 1992 के बाद कितनी तेजी के साथ जिंदगी के हर शोबे में तब्दीली आई। जाहिरन ये निज़ाम अगरचे दुनिया की इक्तसादी इकोनॉमिकल सूरत हाल से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस निज़ाम को एक ज़ाबता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया। इखलाकियात और दीनी एतबार से इसके रास्ते में वाहिद रुकावट चूंकि इस्लाम था, چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر ختم کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں۔ لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہوں، خواہشات میں اضافہ، یہ تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ صرف یہی نہیں کہ عالمی اداروں نے اس کو بدماشی سے دنیا میں نافذ کرایا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطہ حیات کے اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کا اعلان کیا، اور ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے سے لے کر ادویات تک، اور پھر ان ممالک پر قبضہ کر کے وہاں اپنا یہی نیا مذہب طاقت کے زور پر نافذ کیا۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اس نئے مذہب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے، ورنہ اس کو دہشت گرد قرار دے کر پتھر کے دور میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک بہت معمولی مثال آپ کو دیے دیتے ہیں۔ یہودی اداروں کے تیار کردہ مشروبات ہی کو لے لیجئے، مثلاً پیپسی، کوک اور منرل واٹر۔ ان کا استعمال اس نئے مذہب میں لازمی قرار پایا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعد اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی، خواہ اس کے لیے اس ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرنی پڑیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ مذہب کا حصہ کہہ کر نافذ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک دوسرا نام آزادانہ عالمی تجارت کے منافی قرار دے دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپسی یا منرل واٹر پینا تو ہر شخص کا اپنا اختیاری فعل ہے۔ آپ کا ایسا سوچنا درست نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی طاقت ہی کے طور پر لوگوں کو یہ سب پلایا جا رہا ہے۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو مختلف جادوئی طریقوں سے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ نیا مذہب اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار مثالیں زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ اگر اس مذہب کی شریعت میں غیر یہودی اقوام کو زہر پلانا یا جراثیمی ہتھیاروں والا پانی پلانا لکھا جا چکا ہے تو یہ زہر ہر قوم کے بچوں کو پینا پڑے گا۔ نہ انفرادی طور پر اس کی مخالفت برداشت کی جائے گی، نہ حکومتی سطح پر، نہ فوج اس کے راستے میں مزاحم ہوگی، نہ کوئی سیاسی پارٹی۔ سودی نظام اس شریعت کا اہم حصہ اور جان ہے، لہذا دنیا میں اس سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ مذہب کا نام لگانے کی اجازت ہے، مثلاً ہندو بینک، خالص رومن کیتھولک بینک، اسلامک بینک وغیرہ، لیکن نظام سودی ہی رہنا چاہیے۔ البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ اس نئے مذہب میں عورت ذات کو عزت کی چوٹیوں سے گرا کر فٹ پاتھ، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی تکمیل شریعت کا حصہ بنی۔ لہذا دنیا کو بھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی انصاف اور مساوات کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اس لیے نئے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اپنی کتاب میں کھینچا ہے۔ عالمی ادارے مختلف نعروں، ناموں اور تنظیموں کے ذریعے اس نئے مذہب میں لوگوں کو داخل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کولیمن کے یہ اقتباسات پڑھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ نیو ورلڈ آرڈر محض اقتصادی صورتحال سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل ایک نظام اور ایک نیا مذہب ہے۔ وہ لکھتا ہے، ایک عالمی حکومت اور ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہو، مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے امکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور پھر فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سخت اور وضاحت سے تعین کیا جائے، और यहाँ वो दुनिया की मजमूई आबादी की हैसियत से रहेंगे। कोई मुतवस्सित तबका नहीं होगा, सिर्फ हाकिम और महकूम होंगे। तमाम कानून दुनिया की सच्ची अदालतों में एक जैसे होंगे। इन पर अमल दरामद एक आलमी हुकूमत की पुलिस और मुतहदा आलमी फौज के जरिए होगी। लेकिन अब किसी तरह की कौमी सरहदें नहीं होंगी। निज़ाम एक फलाही रियासत की बुनियादों पर इस्तवार होगा। जो लोग एक आलमी हुकूमत के मुती और फरमाबरदार होंगे, उन्हें जिंदा रहने के वसाइल से नवाजा जाएगा। जो लोग बगावत करेंगे, भूखे मर जाएंगे या बाकी करार दे दिए जाएंगे। इन्हें जो भी चाहे कत्ल कर सकेगा। आतिशी असलहा या हथियार जाती तौर पर रखना ممنوع होगा। पार्ट 6 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।